अंसुर मौजूद है तो उसके अंदर भी एक शर का अंसुर और शर पे उभारने वाली शह रखी गई। हदीस शरीफ में आता है हर इंसान के दिल के दाईं तरफ एक फरिश्ते को अल्लाह ने मुकर्रर किया जो उसे भलाई का ख्याल दिल में डालता है, भलाई पर उभारता है, और हर इंसान के दिल की बाईं तरफ एक शैतान अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है जो उसको बुराइयों पर आमादा करता है और बुराइयों पर उभारता है, उसे बुराइयां करवाता है, दिल में वसवसे डालता है। और ये मामला मेरे साथ, आपके साथ, हर एक के साथ, हाजरीन के साथ, गायबीन के साथ, अब तक जो दुनिया में हुए उनके साथ, आइंदा जो इंसान आएंगे उन सबके साथ। ये बात हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आपके साथ भी है? मलाइका का, फरिश्ते का होना तो समझ में आता, नबूवत के साथ में मलकूती सिफात ताज्जुब की बात नहीं है, नबूवत के मकाम से मुनासिब है, उनके शायान शान है। शैतान का जो असर तसल्लुत है, शैतान को जो उसके दिल के बाईं तरफ बिठाया गया, ये आपके साथ भी है? और मैं, हां मेरे साथ भी। अब शुबा होता है कि जब इससे कोई मख्फी नहीं है, इससे कोई बचा हुआ नहीं है, इससे कोई छुपा हुआ नहीं है, तो फिर नऊज़ु बिल्लाह हज़रत पाक सल्लम भी कहीं इससे मुतासिर होते होंगे। आपने फरमाया नहीं, वलाकिन असलमा। ये जो असलमा चार हरूफ है, इसको दो तरह से पढ़ा है उलमा ने, और दो तरह से पढ़ने में दो मतलब निकलते हैं। एक असलमू पढ़ा, उसका मतलब ये बनता है कि उसको अल्लाह ने रखा तो है लेकिन वो मुझ पर असर नहीं करता, मैं महफूज रहता हूं। दूसरा मतलब ये असलमा, लेकिन वो मेरा ताबे हो गया है, यानी बजाय इसके कि वो मुझ पर बुरा असर डाले, मेरे अच्छाई की सिफत उसने कबूल कर ली, वो भी मुसलमान हो गए। हां, कायनात में सिर्फ दो हस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिनके बारे में ये आया है कि वो इस अमल से, इस अम्र से मुस्तस्ना है, अलग है, और वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। इन दोनों के बारे में आता है रिवायत में कि इस चीज से ये मुस्तस्ना थे, लपक ने उनके दिल के दाईं तरफ फरिश्ते को तो रखा था लेकिन उनके दिल के बाईं तरफ में शैतान को और उसके असर को नहीं रखा था। बाद लोग इसको लेकर के ये समझते हैं कि इससे तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत ईसा की बरतरी साबित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अशरफुल मखलूकात फरिश्ते नहीं है, इंसान है। हालांकि फरिश्ते सिर्फ अच्छाई करते हैं, उनके पास बुराई का कोई तसव्वुर नहीं, उसके बावजूद इंसान अच्छा है। वजह उसकी यही है कि इम्तिहान इंसान के लिए है और इम्तिहान देकर के वो कामयाब होता है, तो मतलब अपने इख्तियार से वो कामयाब हो रहा है। फरिश्तों में ये बात नहीं है, उनको बुराई का ख्याल आता ही नहीं है, वो बुराई करना चाहें तो कर सकते ही नहीं है, तो उनके साथ इम्तिहान लगा हुआ नहीं, और इम्तिहान नहीं होने की वजह से इंसानों पर बरतरी नहीं। इम्तिहान की वजह से उनके अंदर, इंसानों के अंदर बरतरी आई है और उसके मुकाबले में फरिश्तों का दर्जा घटा है, क्योंकि उनको इम्तिहान नहीं है, वो तो अपनी फितरी सिफात की वजह से अच्छे काम करते हैं। अगर उनके अंदर इंसानों जैसे मुलाकात रखते हैं तो फिर वो फरिश्ते नहीं, वो भी हमारी तरह के इंसान होते, उनसे भी अच्छाइयां साजिर होती, उनसे भी बुराइयां साजिर होती। तो अगर ये बाद लोगों ने समझा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ लम्मतुश शैतान को जो नहीं रखा गया बाईं तरफ, दिल के बाईं तरफ में शैतान का हिस्सा नहीं रखा गया, उसकी वजह से कहीं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरतरी साबित होती है, ऐसा नहीं। वजह उसकी वही है कि उनके पास से ये सिफत निकाल ली गई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये सिफत रखी गई। निकालने के बाद ना करना उतनी बड़ी बात नहीं है, रखने के बाद भी उस पर अपना असर डालना और उसका असर कबूल नहीं करना, यह सबसे बड़ी बात। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नफा है, आपकी जो फजीलत है, वो आपकी जात के साथ भी वाबस्ता है और उसका असर दूसरा भी ले रहा है। शैतान बजाय इसके कि आप पर असर डाले, शैतान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत नूरानियत को खुद इख्तियार कर लिया, तो उसका असर कबूल करने के बजाय आप उस पर असर अंदाज हो गए, उसके वसवसों को लेने के बजाय आपने अपना खैर का फैज उस पर, फैजान उस पर फरमाया और उसकी वजह से वो मुसलमान हो गए। तो एक लाजिम असर होता है, एक मुताअदी असर होता है, एक अपनी जात तक महदूद होता है, दूसरा उसका असर दूसरों तक भी पहुंचता है। सब लोग जानते हैं कि जिसका असर मुताअदी होता है, दूसरों को पहुंचता है, वो बेहतर होता है उससे जिसका असर उसकी अपनी जात तक। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर चूंकि दूसरों तक पहुंच रहा है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की बरतरी इस वाकये के बावजूद साबित। अलगरज अल्लाह पाक ने दो सिफतों के साथ इंसान को मुत्तसिब फरमाया, उन दो सिफतों के मुहर्रिकात को
उनके अंदर में पैदा फरमाया। यही वजह है कि आदमी कभी तरद्दुद का शिकार होता है, नेकी का काम आता है, नेकी का ख्याल आता है, ख्याल डालने वाला फरिश्ता, उसके बाद बंदे का जहन और उस पर काम करने लगता है, ये नेकी मैं करूं या नहीं करूं। नमाज का वक्त हो गया, जमात का वक्त हो रहा है, नींद भी आ रही है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, सो जाऊं उठ करके बाद में बगैर जमात के पढ़ लूं, रात में काफी देर से मैं सोया हूं, थक करके सोया हूं और थकावट की वजह से सुबह उठना नहीं हुआ है, अल्लाह पाक माफ फरमा देंगे, और वैसे ही सो गया और जमात सजा करने के इरादे से सो गया। अब यहां पर जाने का इरादा अल्लाह के हुक्म की वजह से, नहीं जाने का इरादा अपनी थकावट की वजह से। अल्लाह के हुक्म की बात जहन में डालने वाला फरिश्ता, अपनी थकावट की बात जहन में डालने वाला शैतान, ये तो कश्मकश होती है। एक तरफ से इंसान खैर की तरफ राग़िब हो रहा, दूसरी तरफ से उसको फिर दूसरा ख्याल आ रहा, ये अंदर के शैतान की और अंदर के फरिश्ते की जंग है। हम इंसान के अंदर में, हर इंसान के अंदर जो फरिश्ते और शैतान की सिफत और उसको रखा गया, ये उसकी जंग है। अब बंदे के अंदर जिसके साथ में ताल्लुक ज्यादा होता है, बंदे में जिसके असरात ज्यादा होते हैं, वो उसकी बात को गलबा दे देता है। अब बंदा उठ करके नींद को छोड़ करके सर्दी के जमाने में पानी से वुजू करके, जिसकी सिफत असालतन अगर से गर्म हो लेकिन पानी की सिफत ठंडक है, बुरूदत है, वो उससे वुजू करके ठंडे वक्त के अंदर सर्दी के जमाने में मस्जिद को आता है, जमात से नमाज अदा करता है, फिर जाता है। मतलब यह हुआ कि शैतान के ख्याल को उसने दबा दिया और फरिश्ते के इल्हाम को उसने अपना लिया। और इसके मुकाबले अगर वो सो गया तो मतलब यह हुआ कि उसने फरिश्ते की इसका जो इल्हाम था उसको लग और बेकार कर दिया, और शैतान का जो तासुर था उसको अपने अंदर उसने कबूल कर लिया। तो चूंकि खैर के कामों के अंदर भी यह सिलसिला कश्मकश का जारी होता है, शर के कामों में भी होता है, बुराई का ख्याल आ गया दिल में, ख्याल डालने वाला शैतान है, अब उसके करने और नहीं करने के बारे में बंदा तजब्जुब में है, मैं करूं या नहीं करूं, अगर करता हूं बुराई का काम तो अल्लाह का हुक्म टूटता है, मेरी जमाने के अंदर रुसवाई होती है, तरह तरह की खराबियां इसके जरिए से वजूद में आती हैं, और अगर नहीं करता हूं इस बुराई के काम को तो अल्लाह इससे राजी होते हैं, अल्लाह का हुक्म टूटने से बच जाता है, इसके करने से जो बुराइयां जन्म लेने वाली थी उनका इंसदाद हो जाता है। अलगरज बुराई की जो सिफतें नताइज बाद में वजूद पजीर होते हैं वो रुक जाते हैं, ये उसका असर होता है। अब बंदे ने अगर कर लिया तो मतलब यह हुआ कि शैतान का असर गालिब आ गया, बंदे ने अगर उस काम को नहीं किया तो मतलब यह हुआ कि फरिश्ता का इल्हाम उस पर गालिब आ गया, और यह गलबा बताता है कि उसको ताल्लुक किसके साथ में ज्यादा है, जिस तरफ वो झुक गया उस तरफ उसका असर ज्यादा है। अगर उसने नेक काम किया तो मतलब यह हुआ कि वो फरिश्ते के साथ, फरिश्ते का असर उस पर ज्यादा है, और वो रहमानी इंसान है, मलकूती इंसान है, खैर इंसान, बेहतर इंसान है, बेहतरीन इंसान है। अगर बुराई का ख्याल आने पर वो रुक गया और बुराई नहीं किया तो मतलब यह हुआ फरिश्ते का असर ज्यादा है, फरिश्ते के साथ में इत्तेसाब ज्यादा है, वो रहमानी और मलकूती और बेहतरीन इंसान है। और इसके बिलमुकाबिल अच्छे काम को अगर वो छोड़ देता है या बुरे काम को वो कर लेता है तो इस सूरत में ये समझ में आता है कि शैतान के साथ में उसका इत्तेसाब ज्यादा है, शैतानी असरात उसके अंदर ज्यादा है और शैतान से उसको ताल्लुक और वाबस्तगी ज्यादा है, इस बुनियाद पर वो उसका असर कबूल कर रहा है। यहीं से शरीयत के दो तरह के अहकाम बढ़ते हैं, तकसीम होते हैं, और वो है मामूरात और मनहियात। मामूरात का मतलब बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक हमारे अंजाम देने से है कि हमको वो करना है, बहुत से काम ऐसे हैं, अहकाम ऐसे हैं जिनके बारे में है कि ऐसा नहीं करना है, नमाज पढ़ना है यानी नमाज अदा करना है, ज़कात देना है यानी पैसा अपने पास से अल्लाह की राह में खर्च करना है, रोजा रखना है यानी अपने आप को रोजे पर आमादा करके अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करना है, हज करना है, ये सारे उमूर वो हैं जो मामूरात से हैं, इनको अंजाम देना है। और बहुत सारे अहकाम वो हैं जो मनहियात से ताल्लुक रखते हैं यानी जिनसे रोका गया है, जैसे अल्लाह के साथ में शिर्क नहीं करना है, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करना है, झूठे कस्में नहीं खाना है, मुनाफकत नहीं इख्तियार करना है, दिलों को उसकी बुराई से पाक करना है। अलगरत ये एक मनहियात का दायरा है, एक मामूरात का दायरा है, और ये जो मनहियात और मामूरात का दायरा है फिर इनके ज़ैल में कई किस्में बन जाती हैं। जो मुनकरात हैं, जो मनहियात हैं यानी जो नहीं करने के काम हैं, उनके कई दर्जे हैं। मुनकरात का एक दर्जा मनाजिल का होता है, एक दर्जा मकासिद का होता है, यानी असल गुनाह एक होता है और उस गुनाह की तरफ ले जाने वाले कई और काम होते हैं। तो जो असल गुनाह है वो भी मुनकर और गुनाह है, जो उसकी तरफ ले जाने वाली चीजें हैं वो भी मुनकर और गुनाह। मिसाल के तौर पर
زنا ایک برائی ہے، زنا ایک برا کام ہے، اس یہ اصلاً برا کام ہے، اصل گناہ زنا کرنا ہے، لیکن زنا کی طرف لے جانے والا عمل بد نظری ہے، زنا کی طرف لے جانے والا عمل عورتوں کی آواز سن کر اس سے لطف لینا ہے، ان کی کشش کو محسوس کرنا ہے، اسے لذت اندوز ہونا ہے، عورتوں کے چہروں کو دیکھ کر اس سے ان کی کشش سے لطف اندوز ہونا ہے، ان کے ساتھ میں باہم اختلاط ہے، ان کے ساتھ میں ملنا جلنا ہے، جہاں وہ رہتی ہیں اپنے آپ کو بھی ان کے ساتھ میں رکھنا ہے، تو مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط یہ اس کا سبب ہے، بدنظری یہ زنا کا سبب ہے، ان کی آوازوں کا سننا یہ زنا کا سبب ہے، اور عورتوں کا بے نقاب بے حجاب پھرنا یہ گناہ کا سبب ہے، اور عورتوں کا خوشبوئیں لگا کر کے نکلنا یہ زنا کا سبب ہے۔ تو شریعت نے ان سب چیزوں پر پابندی لگا دی۔ ایک منکرات کا درجہ اصل ہوا، اصل گناہ بدنظری نہیں ہے، اصل گناہ خوشبو لگانا یا خوشبو سونگنا نہیں ہے، اصل گناہ بات کرنا یا بات سننا نہیں ہے، اصل گناہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں ہے، اصل گناہ ہے زنا، اصل گناہ ہے عفت و عصمت کو تار تار کرنا، اصل گناہ ہے عزتوں کے امن کو اٹھا دینا۔ لیکن اس گناہ تک پہنچانے والے یہ جو ذرائع ہیں، ان ذرائع کو بھی شریعت حرام کرتی۔ تو منکرات کا ایک درجہ اصل کا ہوا، اور ایک درجہ ان کے مقدمات کا ہوا، ان کے ذریعوں کا ہوا جو اس کا سبب اور وسیلہ بنتے ہیں۔ شریعت کا اسلوب، حکیمانہ اسلوب یہ ہے کہ وہ اصل کو منع کرتی ہی ہے، اصل کے جو مقدمات ہیں اس کو بھی منع کرتی، اور یہ حکمت سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ لوگوں کو برائیوں سے باز رکھنے کی ترکیبیں اور تدبیریں دنیا کے انتظامات اور حکومتیں بھی کرتی ہیں، دنیا کا نظام بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ حکومتیں، ہر ملک کی حکومت چاہتی ہے کہ اس کے اندر جرائم زیادہ سے زیادہ نہیں پھیلے بلکہ زیادہ سے زیادہ کم ہوتے چلے جائیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں، اس کے لیے انہوں نے جو لا بنایا ہے اور اس کو نافذ کیا ہے ملکوں کے اندر اپنے اپنے، اس کے اندر اور اسلامی نظام کے اندر یہی فرق پایا جاتا ہے کہ اسلامی نظام میں اصل گناہ تو گناہ ہے ہی اور اس سے بچنا ہے، اور اسلامی نظام میں اس گناہ کے ساتھ اس کے ذرائع سے بھی بچنا ہے، اور دوسری دنیا کے نظاموں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان میں اصل گناہ کو تو گناہ بتایا گیا لیکن اس کے جو مقدمات ہیں ان سے روکنے کا کوئی قانون نہیں بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مقدمات سے نہیں رکتے ہیں کیونکہ جرم نہیں ہے، مقدمات سے نہیں رکتے ہیں کیونکہ اس پہ کوئی سزا نہیں ہے، مقدمات سے نہیں رکتے ہیں یعنی ذرائع سے نہیں رکتے ہیں جو اس گناہ تک پہنچانے والے ہیں، اس برائی اور جرم تک پہنچانے والے ہیں، کیونکہ قانون اس کو جرم تسلیم نہیں کرتا۔ جب اس میں پڑتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ، اگلی منزل آسان ہو جاتی، تو پھر وہ گناہ بھی ہونے لگتا ہے۔ بلخلاف اس کے، اسلام کا جو نظام ہے، شریعت کا جو نظام ہے، اللہ کے جو احکام ہیں، ان احکامات کے اندر یہ حکیمانہ اسلوب ہے، انسانی فطرت کا لحاظ ہے، انسانی عادتوں کا لحاظ ہے کہ وہ بندوں کو ایک کام سے روکنا ہے تو اس کے مقدمات سے بھی روکو، اس تک پہنچانے والی چیزوں سے بھی روکو۔ اسی لیے زنا سے روکنا تھا تو بدنظری سے روکا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کو دیکھ رہا ہے، بشرطے کہ جس کو دیکھ رہا ہے وہ اس نے پردے کا اور اپنے آپ کو بدنظری سے بچانے کا اہتمام اگر نہیں کیا ہے، یعنی بے صدری کرتے پھر رہے، بے حجابی کرتے پھر رہے، بے نقابی کرتے پھر رہے، تو اب لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والا بھی گناہگار ہے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے۔ اور المنظور الیہ اور الناظر کا جو قصہ ہے، دیکھنے والا گناہگار ہے، سمجھ میں آتا ہے، جس کو دیکھا جا رہا وہ گناہگار کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو وہ ذرائع کے اندر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ اللہ کا جو حکم زنا نہیں کرنے کا، زنا کے قریب نہیں جانے کا ہے، اس حکم کو پورا کرنے میں مدد دینے والی چیز اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے، اور اس حد تک پردے میں رکھنا ہے کہ دنیاوی ضروریات تو الگ رہیں، دینی ضروریات کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پردے میں رہنے کو پسند فرمایا، حجاب میں رہنے کو پسند فرمایا، نہ صرف حجاب میں اور پردے میں بلکہ گھر کی چہار دیواری میں رہنے کو پسند فرمایا۔ ایک انصاری صحابیہ حضرت ام حمید ساعدیہ ہیں رضی اللہ عنہا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ آ کر مسجد نبوی میں صحابہ کی جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ ان کے آرزو کتنی پاکیزہ ہے، پڑھنا چاہ رہی ہیں نماز، کس کے پیچھے؟ امام الانبیاء کے پیچھے، جو انبیاء کے امام، کہاں؟ مسجد نبوی میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر،
और किसकी जमात में? सहाबा की जमात में। कैसी जमात है सहाबा की? पूरी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा है कि सहाबा की जमात के बाद जितने भी गौस, कुतुब, अब्दाल, बड़े से बड़ा अल्लाह का वली पैदा हुआ, वो सहाबा की गर्द को भी नहीं पा सकता। तो ऐसी जमात में, ऐसी जगह में इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ने की आरजू एक सहाबिया हुजूर की खिदमत में लेकर आए। हुजूर ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु की फी दारी की खैरु मिन सलाती की फी मस्जिदी हाजा। तुम्हारा जो घर है, उस घर के अंदर, घर के सहन के अंदर तुम्हारा नमाज पढ़ना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से बेहतर। एक बात, फिर आगे इस बात को चूंकि सुनने वालों को ख्याल होता है कि मैं इतने बड़े सवाब से महरूम हो रही हूं, तो फरमाया मजीद ताकीद के लिए, वह सलातू की फी बैती की खैरुम मिन सलाती की फी दारी। घर के सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर घर के अंदर के दालान में नमाज पढ़ना। उसको मजीद ताकीद बख्शी, वह सलातू की फी मिखदाई की खैरुम मिन सलाती की फी बैती। घर के दालान में नमाज पढ़ने से बेहतर घर के अंदर की कोठरी में यानी रूम के अंदर नमाज पढ़ना। तो जिस कदर पर्दे का, हिजाब का और सतर का एहतमाम बढ़ता गया औरतों के लिए, उस कदर उसमें फजीलत आती गई, उनका सवाल उसमें बढ़ता गया। ये तो नहीं कहा जा सकता कि औरत अगर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के बजाय घर में पढ़ती है तो उसको उसकी नमाज का सवाब 50,000 नमाज सवाबों के नमाजों के सवाब के बराबर मिलेगा, क्योंकि इसमें सराहतन हुक्म नहीं आया। लेकिन उम्मीद रखी जा सकती है अल्लाह की जात से कि अल्लाह पाक, चूंकि वो अल्लाह के हुक्म को, नबी के हुक्म को पूरा करने के लिए नहीं जा रही है मस्जिद नबवी को, अगर से कि उसकी आरजू है, तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की नीयत से अल्लाह पाक उसको वही सवाब दे जो वहां नमाज पढ़ने वालों का होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुद हक तआला ने और अल्लाह ताला ने अपनी तालीमात और अहकाम के अंदर जो अहकाम दिए हैं, जिन चीजों से रोका है उनसे तो रोका है ही, और जो उसकी तरफ ले जाने वाली चीजें हैं उन चीजों से भी अल्लाह ने रोका है। और ये शरीयत का हकीमाना उसलूब है। अगर इस उसलूब को, इस अंदाज को हम इख्तियार नहीं करते हैं, सिर्फ असल गुनाह से अगर हम बचते हैं और मुकदमात की परवाह नहीं करते कि ये होते हैं तो होने दो, ये करते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं, तो जो बंदा ऐसी सोच रखता है आखिरकार वो उस गुनाह का शिकार होता है। जो चोरी के मुकदमात से नहीं बचता वो चोरी में पड़ जाता है, जो जिना के मुकदमात से नहीं बचता वो जिना में मुलव्वस हो जाता है, जो डाका जनी के मुकदमात से नहीं बचता वो डाका जनी में मुबतला हो जाता है, जो तकब्बुर के मुकदमात से नहीं बचता वो तकब्बुर में पड़ जाता है। अलगरज जाहिर की और बातिन की जितनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के साथ साथ उन बुराइयों तक पहुंचाने के जो जरिए हैं, और हम सब उसको समझते हैं, उनकी तरफ ले जाने वालों से भी बचना, ये शरीयत का तकाजा है। दुनिया की हुकूमतें और दुनिया के निजाम इंसान के जाहिर को अपने जबर और इकरार और ताकत से काबू में लाने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह पाक इंसानों के मिजाज बनाते हैं उनके दिलों की इस्लाह के जरिए से। सबसे पहले उनके उनके दिल को मुतवज्जे करते हैं, उनको ये बताते हैं कि तुम मेरे पाबंद हो, मेरे अहकाम के पाबंद हो, मैंने तुमको पैदा किया है, मेरे मुतालबात तुम्हारे जिम्मे जरूरी है, मैं तुम्हारे हर अमल को देख रहा हूं और उसका तुम्हें हिसाब देना है। फिर कब्र का मंजर याद दिलाते हैं, फिर हशर का मैदान याद दिलाते हैं, आखिरत का दिन याद दिलाते हैं, जन्नत के जरिए से शौक दिलाते हैं, जहन्नम के जरिए से खौफ दिलाते हैं। ये सारी चीजें लाकर इंसान के जहन और दिल को बनाया जा रहा कि जन्नत के शौक में बच जाए, जहन्नम के खौफ में बच जाए, अल्लाह के हिसाब से डर जाए, कब्र और हशर के मंजर से डर करके उससे बच जाए। तो ये चीजों के जरिए से इंसान के अंदरून को सलाह बख्शने की, नेक बनाने की कोशिश हो रही है। तो इस्लामी निजाम दिलों पर मेहनत करने का निजाम और दुनिया का निजाम जाहिर पर मेहनत करने का निजाम है। अब ताला हम सबों को अपने अपने दिलों की इस्लाह की तरफ तवज्जो करने की तौफीक में हमत करना।